ஓம் சாந்தி. ஸ்ரேஷ்ட வ்ருத்தி சே வ்யவஹார் சுத்தி. சங்கம் யுக் மே பியாரே பாப் தாதா ஹமே ஹர் ரோஜ் ஜான் ஓர் யோக கி பாலனா தேதே ஹேன். உஸ் ஜான் ஓர் யோக கி பாலனா சே ஹமாரே ஜீவன் மே திவ்ய குணோ கி தாரணா ஹோதி ஜாதி ஹேன். और जैसे जैसे दिव्य गुणों की धारणा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारी वृत्ति श्रेष्ठ बनती जाती है. परमात्मा की अद्भुत पालना से हमारे जीवन में அனோக்கா பரிவர்த்தன் ஆதா ஹே. சப்சே பஹலே பரமாத்ம பாலனா சே ஹமாரி ஸ்மிருதி ஸ்ரேஷ்ட பந்தி ஜாதி ஹே. ஸ்ரேஷ்ட ஸ்மிருதி சே ஹமாரி दृष्टि भी श्रेष्ठ बनती जाती है. और जैसे हमारी दृष्टि श्रेष्ठ बनती है, परिणाम स्वरूप हमारी वृत्ति भी श्रेष्ठ बनती जाती है. और श्रेष्ठ वृत्ति से श्रेष्ठ कृति हमारी बनती जाती है. श्रेष्ठ कृति से व्यवहार शुद्धि होती है और व्यवहार शुद्धि से हम अपने जीवन में आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं. तो ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ वृत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे उन्नति का आधार है हमारी श्रेष्ठ वृत्ति. लेकिन सवाल ये उठता है, श्रेष्ठ वृत्ति कैसे बनाएं? श्रेष्ठ वृत्ति किसे कहते हैं? जब हमारे मन में सदा श्रेष्ठ चिंतन चलता रहता है तो हमारी वृत्ति श्रेष्ठ बनती जाती है. इसलिए कहते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा व्यक्तित्व बनता जाता है. अगर हमारी वृत्ति श्रेष्ठ होती है तो ऑटोमेटिक हमारे मन में श्रेष्ठ चिंतन चलता रहता है. लेकिन सदा श्रेष्ठ चिंतन चलता रहे उसके लिए पहली बात है, सदा स्वमानधारी होकर रहना. जब हम श्रेष्ठ स्वमान में रहते हैं तो ईश्वरीय नशे की हमें अनुभूति होती रहती है. और जब ईश्वरीय नशे की अनुभूति होती है तो स्वतः ही हमारे मन में श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न होते रहते हैं. इसलिए सारे दिन भर में समानधारी होकर रहना जरूरी है। दूसरी बात, मन में सदा श्रेष्ठ चिंतन चलता रहे उसके लिए मुरली का गहन अध्ययन करते रहना बहुत जरूरी है। केवल एक बार मुरली पढ़ लिया नहीं, मुरली अर्थात परमात्मा के महावाक्य जो होते हैं उसका हमें गहन अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि बाबा के हरेक महावाक्य में बहुत गहरा राज समाया होता है। और जैसे जैसे हम गहरे राजों को समझते जाते हैं तो हमारे मन और बुद्धि में ज्ञान रतन टपकने लगते हैं, जिससे हमारा चिंतन श्रेष्ठ बनता जाता है। इसलिए मुरली का हर रोज एकांत में बैठकर गहन अध्ययन करते रहना बहुत जरूरी है। श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल भी श्रेष्ठ बनता जाता है। कहावत प्रसिद्ध है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जैसे संकल्प हमारे आत्मा में अर्थात मन में चलते हैं वो सारे संकल्प इस ब्रह्मांड में वायुमंडल में फैलते रहते हैं। हर एक संकल्प के द्वारा इस वायुमंडल में सजीव तरंगे फैलती रहती हैं, और जैसे जैसे सकारात्मक सजीव तरंगे इस वायुमंडल में फैलती रहती हैं तो वायुमंडल शक्तिशाली बनता जाता है। वास्तव में आत्मा एक चेतन अगरबत्ती के समान होती है। जब हमारे मन में पवित्र संकल्पों की खुशबू उत्पन्न होती है तो वातावरण भी खुशबूदार बनता है और उसको सभी महसूस भी करते हैं, बजाय उसके हमारे मन में अपवित्र संकल्प रूपी बदबूएं निकलती हैं तो वातावरण भी वैसा ही बनता जाता है। इसलिए जब हमारी वृत्ति श्रेष्ठ होती है तो सकारात्मक संकल्पों के माध्यम से सकारात्मक तरंगे वाइब्रेशन इस वायुमंडल में फैलते ही रहते हैं। श्रेष्ठ वृत्ति से हमारी दृष्टि भी श्रेष्ठ बनती जाती है। श्रेष्ठ दृष्टि बनना अर्थात साधारण देह के बजाय दिव्य स्वरूप दिखाई देना, क्योंकि जितनी हमारी ज्ञान की पराकाष्ठा बढ़ती जाती है उतनी हमारी दिव्यता की शक्ति, अलौकिकता की शक्ति, रूहानियत की शक्ति स्वतः ही बढ़ती जाती है। जितने जितने हम इस ज्ञान मार्ग में पुराने होते जाते हैं उतनी हमारी रूहानियत की शक्ति बढ़ती रहे। रूह समझकर रूह को देखने की शक्ति को रूहानियत की शक्ति कहते हैं। और जब हमारी दृष्टि श्रेष्ठ बनती जाती है तो किसी के अवगुण हमें नजर नहीं आते हैं, हमारी दृष्टि गुणग्राही बनती जाती है, पवित्र बनती जाती है। पवित्र दृष्टि बनना अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति सदा मन में शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं पनपते रहना। कई बार कोई किसी को कहता है कि इसकी दृष्टि वृत्ति ठीक नहीं है, इसका किसी के साथ लगाव झुकाव है, तो इसको कहते हैं अपवित्र दृष्टि, अपवित्र वृत्ति। लेकिन हमारी दृष्टि जैसी जैसी शुद्ध बनती है, श्रेष्ठ बनती है, दिव्य बनती है, तो दैहिक संबंधों से हम परे हो जाते हैं, ऊपर उठने लगते हैं। इसलिए श्रेष्ठ वृत्ति से श्रेष्ठ दृष्टि अनुभव करते रहें, श्रेष्ठ वृत्ति से हमारे बोल भी श्रेष्ठ बनते जाते हैं। जब भी हम संगठन में रहते हैं तो हमारे मुख से सम्मानजनक बोल निकलते हैं, अमृत समान मीठे बोल निकलते हैं। इस संदर्भ में मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूं। एक बार राजा, सूबेदार और सिपाही तीनों घोड़े पर बैठकर जंगल में शिकार करने के लिए गए। जंगल में जाने के बाद घोड़े को पेड़ से बांधा और तीनों शिकार करने के लिए गए। जैसे शिकार करके वापस आते हैं तो देखते हैं घोड़ा वहां से गायब हो गया, वहां से छूट के कहीं चला गया। तो राजा ने सिपाही को घोड़े को ढूंढने के लिए जंगल में भेजा। रास्ते में एक अंधा व्यक्ति बैठा था, तो सिपाही अंधे व्यक्ति को कहने लगा कि अंधे बाबा, यहां से कोई घोड़ा गुजरा क्या? क्योंकि घोड़े के पैर में घुंघरू थे, घुंघरू की कोई आवाज आई क्या? उसने कहा नहीं भाई। सिपाही को देर होने के कारण राजा ने सूबेदार को घोड़ा ढूंढने के लिए भेजा। सूबेदार उसी रास्ते से जाता है, अंधा व्यक्ति मिलता है तो कहता है बाबा जी, यहां से कोई घोड़ा गुजरा क्या? कोई घुंघरू की आवाज आई क्या? उसने कहा नहीं भाई। सूबेदार को देरी हो गई तो राजा खुद घोड़े को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़े। उसी रास्ते से निकल रहे थे तो अंधे व्यक्ति वहां बैठे थे, तो उन्होंने कहा महात्मा जी, यहां से कोई घोड़ा गुजरा क्या? घुंघरू की कोई आवाज आई क्या? उसने कहा नहीं राजन। तो राजा चौंक गया, उसको पूछा आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपने कैसे पहचाना कि मैं राजा हूं? उसने कहा राजन, जो जितना बड़ा व्यक्ति होता है उसका दिल भी बहुत बड़ा होता है, उसकी वृत्ति भी बहुत महान होती है और उसके बोल भी ऐसे सम्मानजनक होते हैं। तो जैसे जैसे हमारे बोल हमारे व्यक्तित्व की पहचान देते हैं, तो जैसे हमारी वृत्ति श्रेष्ठ बनती जाती है, हमारे मुख से बोल भी ऐसे सम्मानजनक निकलने लगते हैं। जैसी वृत्ति वैसे कर्म श्रेष्ठ हमारे बनते जाते हैं। जब हमारी वृत्ति श्रेष्ठ होती है तो मन में श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न होने लगते हैं। श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज से श्रेष्ठ कर्म रूपी वृक्ष स्वतः ही निकलते हैं और हम कमल आसनधारी बनकर कर्म योगी स्वयं को अनुभव करते हैं। और जब कर्म योगी बनते हैं तो हमारी डबल कमाई होती है और डबल कमाई होने से हमें बहुत खुशी होती है। तो ऐसी खुशी होने से, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने से अनेक आत्माओं को प्रेरणा भी मिलती रहती है। इसलिए श्रेष्ठ वृत्ति से हमारे कर्म भी श्रेष्ठ बनते जाते हैं और श्रेष्ठ कर्म करते करते रहने से हमारे संस्कार भी श्रेष्ठ बनते जाते हैं। अभी जैसी श्रेष्ठ वृत्ति होती है उससे हमारी श्रेष्ठ स्थिति बनती है। वो कैसे? श्रेष्ठ वृत्ति होने से व्यवहार शुद्धि होती है। व्यवहार शुद्धि होने से व्यवहार कुशलता हमारी बढ़ती जाती है और हम निर्विघ्न स्वयं रहते हैं और सर्व को निर्विघ्न रखते हैं। न खुद डिस्टर्ब होते हैं, न किसी को डिस्टर्ब करते हैं। तो हम स्वयं से संतुष्ट अनुभव करने लगते हैं। अभी ऐसी सिचुएशन में बाबा ने जो हमें बहुत महत्वपूर्ण खजाने दिए हैं, समय का खजाना और संकल्पों का खजाना, इन दोनों खजानों को हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने में लगाते रहते हैं। जब मन हमारा संतुष्ट होता है, शांत होता है, तो मन मना भव का मंत्र का जाप भी सहज करता रहता है। हमें ये ध्यान में रखना है, बाबा के पास आने के बाद कुछ भी हो मुझे अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है। उसके लिए कितना भी मुझे प्रयास करना पड़े करके रहूंगा, क्योंकि जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति हमारी होती है। और जब स्वस्थिति हमारी शक्तिशाली होती है तो हमारे जीवन में आने वाली विकट परिस्थितियों का भी हम सहज सामना करते रहते हैं। तो इसलिए श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हमें पावरफुल योगाभ्यास करते रहना जरूरी है। हमारी जो रेस है वो योगाभ्यास में रेस है। हमें इस योग के रेस में केवल रनर नहीं बनना है लेकिन विनर बनना है, प्राइस विन करने वाला बनना है। उसके लिए पावरफुल योगाभ्यास बढ़ाते रहना जरूरी है। साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है, क्योंकि हमारे सिर पर पिछले जन्मों के पाप कर्मों का बोझ भी है, उसको खत्म करना है और आत्मा रूपी बैटरी को फुल चार्ज भी करना है और साथ साथ शक्तियों का खजाना भी जमा करना है। जो हम अनेक आत्माओं को शक्ति प्रदान कर सकें। इन सभी बातों के लिए आवश्यकता है शक्तिशाली योगाभ्यास करने की, स्वस्थिति को शक्तिशाली बनाने की। स्वस्थिति, स्व माना आत्मा, आत्मा की स्थिति शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे पहली बात है हमें एकांत में बैठकर आत्म अभिमानी स्थिति को बहुत पक्का करना जरूरी है, क्योंकि यही पहला पाठ है, यही अंतिम पाठ है और यही सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। इसको हमने महसूस करना है और इसको घोट घोट के, रट रट के, कूट कूट के हमें पक्का करना है, क्योंकि हम देखते हैं इस ज्ञान मार्ग में थोड़ा सा पुराने हो जाते हैं तो हमें सूक्ष्म अहंकार आता है, मैं तो पुराना हूँ, मुझे ये पहले पाठ पर अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो सूक्ष्म अहंकार हमें उस पहले पाठ पर दिल से अभ्यास करने से वंचित रखता है। उसके कारण हमारी स्थिति हलचल में आती रहती है और हल चलाने जैसी मेहनत हम सदा करते रहते हैं। इसलिए विधि पूर्वक आत्मा का अभ्यास हमें करते रहना जरूरी है। जब तक खुद को नहीं देख सकते हैं तब तक खुदा को भी नहीं देख सकते हैं। जब तक खुद की स्मृति नहीं रहती है तब तक खुदा की भी स्मृति नहीं रह सकती है। इसलिए आत्मा का दर्शन हमें करना है दिव्य दृष्टि से, बुद्धि रूपी नेत्र से आत्मा को स्पष्ट प्रकृति के बीच में देखना है, उसके बाद उसको अनुभव करना है कि मैं भ्रुकुटि के बीच चमकता हुआ एक अजीब सितारा हूँ और गजब का सितारा हूँ। अजीब सितारा क्यों हूँ? क्योंकि आसमान के तारे तो इन आंखों से दिखाई देते हैं, लेकिन मैं जो दिव्य सितारा हूँ उसको दिव्य नेत्र से ही देखा जाता है। इसलिए अजीब सितारा हूँ और गजब का सितारा क्यों हूँ? क्योंकि छोटे से सितारे में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है जो कभी मिटता नहीं, कभी घिसता नहीं। इसलिए इस अभ्यास को हमें बहुत पक्का करना है। हम सभी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। प्राइमरी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पहला अक्षर सिखाया जाता है ए बी सी डी, लिखो। ए लिखना नहीं आता है तो टीचर उसका कान पकड़ता है। तो यहाँ पे ए लिखना आना अर्थात आत्मा समझना आना, बी लिखना अर्थात बाबा को यथार्थ रीति से जानना होगा, सी अर्थात साइकिल को समझना होगा, डी अर्थात ड्रामा के राज को समझना होगा। अगर ये चार अक्षर भी हमें अच्छी तरह से लिखने आते हैं तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली बात है आत्मिक स्थिति को बढ़ाते जाना। आत्मा का जब हम अभ्यास करते हैं तो इस देह की दुनिया से, देह की दल दल से स्वयं को न्यारा अनुभव करने लगते हैं। बुद्धि का कनेक्शन इस साकारी दुनिया से कट हो जाता है। साकारी देह से, साकारी दुनिया से, पदार्थों से कट होता है। बाद में बुद्धि को ऊपर की ओर ले जाने का काम करता है स्वमान का अभ्यास। जब तक स्वमान का अभ्यास हम नहीं करते हैं, तब तक बुद्धि और मन इस दुनिया से पार नहीं जा सकती है, बाबा को सहज याद नहीं कर सकती है। तो सारे दिन भर में हमें स्वमान का अभ्यास जरूर करना है। जब बड़े लोग होते हैं, बड़े ऑफिसर होते हैं, तो सारे दिन भर में टाई पहन कर रखते हैं। जब टाई पहन कर रखते हैं तो उनका चेहरा बदल जाता है, मैंने टाई पहना हुआ है। तो हम भी बड़े बाप के बड़े बच्चे हैं, हमें बाबा ने आत्मा को स्वमान का टाइटल रूपी टाई दिया है। इस स्वमान के टाइटल रूपी टाई को सारे दिन भर में हमें पहनकर रखना है। तो जैसे हम उस स्वमान के टाइटल को पहनकर रखेंगे, उसमें स्थित होते जाएंगे, तो हमारी डबल प्रोग्रेस होती है। पहली प्रोग्रेस ये होती है, आत्मा में जो सुसुप्त शक्तियां होती हैं, वो सारी शक्तियां उजागर होती है, जागृत हो जाती हैं। हर एक आत्मा में असीम शक्तियों का भंडार छिपा हुआ होता है, उस सुसुप्त शक्तियों को जगाने का काम केवल स्वमान ही करता है। इसलिए एक स्लोगन कभी भी हमें नहीं भूलना है, अनुमान हमें हनुमान बनने नहीं देता है। अनुमान हमें हनुमान जैसा बलशाली शक्तिशाली बनने नहीं देता है। जैसे अनुमान को हटा देते हैं और स्वमान में स्थित होते हैं, तो सारी शक्तियां हमारी जागृत होने लगती हैं और हमारा व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। और दूसरा प्रोग्रेस है, जो सर्व शक्तियों का स्रोत है, उस स्रोत के साथ हमारी बुद्धि की तार जोड़ने का काम ये स्वमान कराता है। जैसे स्वमान में रहते हैं तो ऐसा अनुभव करते हैं, जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर। हम स्वयं को अनुभव करते हैं अपनी दुनिया में, अलौकिक दुनिया में स्वयं को अनुभव करने लगते हैं। और हमारी आत्मा में जो रॉयल संस्कार सतयुग में होते हैं, वो रॉयल संस्कार भी हमें अभी धारण करने हैं। शरीर छोड़ने के पहले, घर वापस जाने के पहले ऐसे रॉयल संस्कार धारण करने के लिए रॉयल स्वमान में स्थित रहना ही होगा। इसी सभा में कई राजे महाराजे बैठे हुए हैं, होनहार राजे महाराजे बैठे हैं, इसी सभा में बैठे हैं, लेकिन गुप्त वेश में है। जैसे परम धाम से धरती पर आएंगे, राजा महाराजा के सिंहासन पर बैठेंगे, तो आपके चेहरे पर वो रूहानियत, वो रुहाब, वो रॉयल्टी का जो नशा होना चाहिए, वो अभी हमें धारण करना होगा। वो कैसे धारण करेंगे? जितना श्रेष्ठ सम्मान होगा उतना श्रेष्ठ नशा भी हमें अनुभव होता जाएगा, और जितना श्रेष्ठ नशा अनुभव होता जाएगा उतना ऊंचा स्टेटस हमें सतयुग त्रेता युग में मिलकर ही रहेगा, ये पक्की बात है। इसलिए हम सभी होनहार राजा महाराजाओं को बाबा ने संगम युग में ही समान का सिंहासन दे दिया है। बाबा की एक आश है कि मेरा हर एक आत्मा रूपी बच्चा राजा बच्चा हो, मैं राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूँ। राजा हमेशा सिंहासन पर बैठता है और राजा हमेशा शासन करता है, तो आत्मा रूपी राजा जब समान के सिंहासन पर बैठता है तो हमारी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्र रूपी प्रजा पर हम शासन और नियंत्रण करके स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति करते जाते हैं। और तीसरी बात, श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हमें बाबा को यथार्थ रीति से पहचानना होगा। बाबा मुरली में कहते हैं, मेरे इतने जो ढेर बच्चे हैं, इन ढेर बच्चों में बहुत थोड़े बच्चे हैं जो मुझे यथार्थ रीति से जानते हैं और यथार्थ रीति से याद करते हैं। बाबा क्यों ऐसा कह रहे हैं, थोड़े बच्चे मुझे यथार्थ रीति से जानते हैं और यथार्थ रीति से याद करते हैं, इसका मतलब इसके पीछे कुछ गुह्य राज जरूर छिपा हुआ है, उस राज को हमें समझना होगा। बाबा के स्वरूप को हमें यथार्थ रीति से जानना है, तो बाबा का स्वरूप मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे परमात्मा भी ज्योति बिंदु ही है, स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अंतर किस में है, जो सात गुण आत्मा में निजी गुण है, सुख शांति प्रेम पवित्रता ज्ञान आनंद और शक्ति, इन सात गुणों के परमात्मा सागर हैं अर्थात सिंधु हैं, बिंदु हैं, लेकिन सात सिंधु उसमें समाये हुए हैं। कितनी पावरफुल वो बिंदु होगी आप सोच समझते हैं, समझ सकते हैं। सारे संसार की रचना का ज्ञान उस बिंदु में है, सारे संसार की रचना को चलाने की शक्ति उस बिंदु में है, और सारे संसार का जो क्रिएटर डायरेक्टर कंट्रोलर वो बिंदु है। कितनी पावरफुल वो बिंदु होगी आप सोच सकते हैं। हमने बाबा के कर बाबा को ऑर्डिनरी बना दिया। बाबा तो हैं, लेकिन वो कौन सी हस्ती हैं? सारे संसार की सबसे बड़ी वो हस्ती हैं, जिसके मुट्ठी में सारा संसार है, सारे संसार को चलाने की ताकत उनमें है, इतनी वो महान विभूति हैं। इसलिए योगियों ने परमात्मा के स्वरूप का जब वर्णन शास्त्रों में किया, तो परमात्मा के स्वरूप का वर्णन उसकी तुलना इस स्थूल दुनिया के सूर्य के साथ की। जैसा इस सूर्य को सूर्य कहते हैं दो कारणों से, पहला कारण है वो भौतिक शक्तियों का निरंतर प्रस्फुटीकरण करता ही रहता है, दूसरा कारण है उनके प्रकाश में भस्म करने की क्षमता होती है। इससे परमात्मा को भी ज्ञान सूर्य कहते हैं, अर्थात परमात्मा आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं, निरंतर आध्यात्मिक शक्तियों का वितरण इस संसार में करते ही रहते हैं। और दूसरी बात है उनके प्रकाश में भस्म करने की क्षमता होती है, जो हमारी आत्मा में जो विकारों की गंदगी है कचड़ा है, ज्ञान सूर्य का प्रकाश आत्मा पर पड़ता है तो सारी गंदगी भस्म हो जाती है, आत्मा क्लीन कांचन प्योर सोना बन जाती है। तो ये सूर्य तो एक दुनिया का सूर्य है, लेकिन ये ज्ञान सूर्य तीनों लोगों का सूर्य है, तीनों लोगों में उनका प्रकाश निरंतर प्रवाहित होता ही रहता है। इसलिए अर्जुन ने कहा है परमात्मा का स्वरूप हजारों सूर्यों से शक्तिशाली है, क्योंकि इस सूर्य का बाप वो ज्ञान सूर्य है। ये सूर्य इतना शक्तिशाली है तो उसका जो क्रिएटर है कितना शक्तिशाली होगा, ये आप सोच सकते हैं। ये उनका रूप हो गया। और परमात्मा का नाम तीन शब्दों में गाया जाता है। कौन से तीन शब्द हैं? सत्यम, शिवम, सुंदरम। सत्यम अर्थात वो सत्यता के सागर हैं। सारे संसार की आत्माओं को सत्यता की शक्ति प्रदान करने वाले हैं। हम सतयुग त्रेता युग में सत्य स्वरूप में टिकते थे, सत्य बोलते थे, बाद में द्वापर युग से वो छोड़ दिया। तो सारे संसार की आत्माओं को सत्यता की शक्ति प्रदान करने वाले वो हैं, इसलिए वो सत्यता के सागर हैं। इसलिए क्रिश्चियनिटी में कहा गया है सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। शिवम अर्थात वो कल्याणकारी है, वो सदा कल्याण, सबका कल्याण, बेहद का कल्याण करते हैं। आत्माओं ते हद के कल्याणकारी होते हैं। हमारे घर में कोई मेहमान आता है, दो तीन दिन के बाद घुमा फिरा के पूछते हैं आपकी टिकट वापस जाने की कब है, बोलो तो सही। हद के कल्याणकारी है वो, तो कल्याण का सागर है। सारे संसार की आत्माओं का कल्याण करते हैं। और हमने द्वापर युग से केवल बाबा को गालियां दी, तुम कुत्ते में हो, तुम गधे में हो, तुम सुअर में हो, केवल गालियां दी। फिर भी वह रहम का सागर बाप हम सभी बच्चों का कल्याण करने के लिए इस धरती पर पधारा है। कल्याण का वो सागर है। इस संसार में सबसे जास्ती मेरा कल्याण चाहने वाला केवल वो मेरा बाप है और कोई भी नहीं है। और सुंदरम अर्थात वो सुंदरता के सागर हैं। सारे संसार की आत्माओं को सुंदर बनाने का ठेका उन्होंने लिया है। सभी आत्माओं पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज हैं। सभी आत्माओं को सुंदर बनाने का ठेकेदार कितना सुंदर होगा आप सोच सकते हैं। अर्थात वो सुंदरता के सागर है। इस दुनिया में आशुक और माशुक एक दो पर फिदा हो जाते हैं दैहिक सुंदरता के आधार पर। तो उन्होंने गीत बनाया, तुम इतनी सुंदर हो तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे में क्या देखूं। तो हमारे दिल से गीत निकले, बाबा आप इतने सुंदर हो तेरे चेहरे से मेरी नजर ही नहीं हटती, ये दुनिया के नजारे में क्या देखो। हमारे दिल से यही गीत सदा निकलते रहे हैं, तू सूरज मैं सूरज मुखी हूँ पिया, तू सूरज मैं सूरज मुखी हूँ पिया, न देखू तुझे तो लागे नहीं जिया, खिले नहीं जिया, एक पल भी आपको नहीं देखती हूँ तो मेरा जिया लगता नहीं। आप इतने सुंदर हो, इतने सुंदर, तो बाबा की सुंदर छवि हमें परमधाम रूपी पीस पैलेस में अनुभव करना है। और बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा की सुंदर छवि को देखते रहना है। बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा को देखना माना बाबा से कनेक्शन जुट जाना। यथार्थ याद किसको कहते हैं? यथार्थ याद बाबा को करना अर्थात परम धाम रूपी पीस पैलेस में ज्ञान सुरेश शिव बाबा बैठे हैं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा बाबा के सामने बैठी हूँ और मेरा बुद्धि रूपी नेत्र बाबा पर टिका हुआ है और मेरा मन मन मना भाव का जाप कर रहा है, मंत्र का अजापा जाप कर रहा है। इसको कहते हैं यथार्थ याद। इस याद को हमें बढ़ाते जाना है। योगाभ्यास को पावरफुल बनाने के लिए हमारे दिल में परमात्म प्यार का प्रतिशत सदा बढ़ता रहे। याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा सदा बढ़ती रहे तो शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति बढ़ती जाएगी। तो बाबा ने कहा है आगे चलकर आपको बहुत चलन और चेहरे से सेवा करनी होगी। व्यवहार शुद्धि होना अर्थात चलन से सेवा करना और श्रेष्ठ स्थिति बनाना अर्थात चेहरे के द्वारा सेवा करना। जब चलन और चेहरे से बहुत सेवा करती जाएंगे, अनेकों की दिल की दुआएं जमा करते जाएंगे तो मनसा सेवा बेहद की सेवा हम करने के लिए सक्षम होते जाएंगे, क्योंकि आगे चलकर मनसा सेवा हमें बहुत करनी होगी। तो श्रेष्ठ वृत्ति से ही हमारी व्यवहार शुद्धि होगी, व्यवहार शुद्धि से व्यवहार कुशलता बढ़ती जाएगी और हमारी श्रेष्ठ स्थिति बनती जाएगी, और श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा बेहद की सेवा, विश्व की सेवा करने की क्षमता हमारे पास बढ़ती जाएगी। अभी हम कुछ घड़ियों के लिए बहुत ही गहन योग की अनुभूति करने जा रहे हैं। ऐसी अनुभूति बाबा आपको कराएंगे जो कभी आप भूल नहीं पाओगे। इसलिए सभी अलर्ट होके बैठेंगे, कोई भी बीच में नहीं उठेंगे, बिल्कुल एक की लगन में मगन होकर चंद घड़ियों के लिए हम उस प्यारे बाबुल की याद में खो जाएंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा सफेद लाइट करेंगे, थोड़ा सा सफेद, सभी खड़े हो जाएंगे, आमने सामने खड़े होंगे, एक दो को दृष्टि देंगे, बाएं बाएं घूमकर आमने सामने दृष्टि देंगे। मैं कमेंट्री देता जाऊंगा, बहुत सुंदर अनुभूति आप करते जाएंगे। सॉफ्ट म्यूजिक करेंगे ना, ओम शांति। इस देह रूपी मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक भ्रुकुटि के बीच विराजमान हूँ। मैं महान आत्मा हूँ, मेरी वृत्ति श्रेष्ठ वृत्ति है। मेरे समक्ष विराजमान महान आत्मा को भी मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ। हम दोनों ज्योति बिंदु आत्मा आत्मा भाई भाई है, एक निराकार शिव पिता की प्यारी संतान है। मेरी दृष्टि और वृत्ति दिव्य बनती जा रही है, साधारण देह के बजाय दिव्य स्वरूप मुझे अनुभव हो रहा है और दिखाई भी दे रहा है। जैसे शिव बाबा की दृष्टि निराकारी निर्विकारी है, वैसे मेरी भी दृष्टि निराकारी निर्विकारी बनती जा रही है। जैसे आसमान में जड़ सितारों की रिमझिम लगी है, वैसे इस हॉल में भी हम आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों की रिमझिम लगी है। ज्ञान सूर्य शिव बाबा परम धाम से हम आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों की रिमझिम को देख देख हर्षा रहे हैं, और हम सभी आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर स्नेह के पुष्पों की वर्षा भी कर रहे हैं। मेरा असली स्वरूप ज्योति बिंदु स्वरूप है, भ्रुकुटि में दिव्य सितारा दमक रहा है, चमक रहा है। बैठ जाएंगे सभी। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा इस देह रूपी मकान से न्यारी होकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर परम धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ। मैं आत्म ज्योति ब्रह्मांड की दुनिया में दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ। बादलों से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूँ, जा रही हूँ। ओह चमकीली फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूँ, जहाँ चारों ओर सफेद सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मौज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यह। ओह फरिश्तों की शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपनी संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में दिव्य और भव्य फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। स्नेह सागर की स्नेह की लहरें ब्रह्मा बाबा के नेत्र मार्ग से मस फरिश्ते की ओर प्रवाहित हो रही है। मैं फरिश्ता स्नेह के सागर की लहरों में बाबा की बाहों के झूले में झूल रहा हूँ, झूलता ही जा रहा हूँ और बाबा की बाहों में समा गया हूँ। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ, जा रही हूँ। जगमगति हुई चैतन्य ज्योति उड़ती हुई जा रही हूँ। ओह दिव्य ज्योति धाम में पहुंच गई हूँ, जहाँ चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति का सन्नाटा छाया हुआ है। कितना प्यारा है यह मेरा मूल वतन स्वीट साइलेंस हो, मेरी प्राणों की प्राण, मेरी प्राण नाथ, मेरी प्राणेश्वर, मेरी प्राण आधार, मेरी प्राण प्यारी, प्राण पिता, सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबुल, मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति अपने दिव्य चक्षु से बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूँ, सुंदरता के सागर को निहार रही हूँ। बाबा मेरे नयनों के नूर बन चुके हैं, मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलवर, मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है, प्रचंड स्रोत है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से बेहद शक्तिशाली किरणों की मूसलाधार वर्षा मोस आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शुभिता से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां, अद्भुत शक्तियां ग्रहण कर रही हूँ, ग्रहण करती ही जा रही हूँ। योग की ज्वाला में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं, भस्म होती ही जा रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूँ, तपती ही जा रही हूँ। सचमुच मेरे जीवन के सबसे खुशनुमे पल है यह, सुनहरे पल है यह, जो मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट महाज्योति परम ज्योति ज्योति सागर शिव पिता के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। वारे में वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य, भाग्य विधाता बाप के साथ बैठकर मैं भाग्यशाली आत्मा भाग्य लूट रही हूँ, लुटा रही हूँ, खजाने लूट रही हूँ, लुटा रही हूँ। क्या कहने मेरे भाग्य का, मेरा भाग्य बुलंदियों पर है। बस बाबा ही बाबा मेरी नजरों में समाये हैं, और बाबा की नजरों में मैं आत्म ज्योति समाई हूँ। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ, आ रही हूँ। मस शक्तिशाली आत्मा से शक्तिशाली वृत्ति के द्वारा इस वायुमंडल में सजीव तरंगे, शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर फैल रही है, वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। मैं श्रेष्ठ वृत्ति वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ सिंहासन पर, स्वमान के सिंहासन पर विराजमान होकर स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रही हूँ। ज्ञान सूर्य पिता से, शक्तियों का फाउंटेन धैर्य परम धाम से मस आत्म ज्योति पर हो रहा है, शक्तियों का फाउंटेन पड़ रहा है और मेरे द्वारा शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ। मेरे प्रकृति में चमकता हुआ चैतन्य हीरा विराजमान है। मैं इस आत्मा रूपी चैतन्य सितारे से, चैतन्य हीरे से अष्ट शक्तियों की चमक, अष्ट शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही है। मैं बेदाग चैतन्य हीरा हूँ। इस बेहद ड्रामा में हीरो पार्टधारी हूँ, क्योंकि मेरा ड्रामा के डायरेक्टर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। उनसे हर रोज मुझे डायरेक्शन श्रीमत के रूप में मिलता ही रहता है, जिससे मेरा जीवन श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनता जा रहा है। मैं श्रेष्ठ वृत्ति वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, शुद्ध व्यवहार करने वाली महान आत्मा हूँ। मेरी महानता के गीत स्वयं भगवान हर रोज मुरली में गाते ही रहते हैं। ओम शांति शांति शांति, शांति।